अगर वो अब भी जिहाद करने के लिए निकल खड़े हों तो अल्लाह ताला ने उनसे वादा कर रखा हुआ है कि वो उनको दुनिया पर बरकरी अता कर देगा। चुनाँचे मुसलमानों ने अपने ज़वाल के असबाब का जायजा लेने के बजाय ये तशख़ीस करके इस नुस्खे को आजमाना शुरू किया। तो पिछले 200 साल में आप ये देखिए कि जितने इकदाम मुसलमानों ने किए और वो सारे के सारे कोई हमारी आपकी तरह के मुसलमानों ने किए, उनमें से बहुत सालहीन ने भी किए, बहुत नेक लोगों ने किए, सब के सब नाकाम हुए, एक भी कामयाब नहीं। मैं कई मरतबा गिनवा चुका हूं कि 9-10 इकदाम हैं जो इस 200 साल के अरसे में किए हैं, वो सब नाकाम हुए। मुसलमानों की लीडरशिप के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो आज भी मुसलमानों को यही दर्श दे रही है और यही बता रही है कि तुम्हारे ऊपर लोगों ने साजिशें करके गलबा हासिल कर लिया है, असल कसूर इन लोगों का है, लिहाजा तुम निकलो और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे ही ये काम करोगे तो गलबा हासिल हो जाएगा। ये तशखीस भी गलत है, ये इलाज भी गलत है। अब मुसलमानों की लीडरशिप जब इस तशखीस पर भी इसरार कर रही है और इलाज पर भी इसरार कर रही है तो तारीकी और बढ़ती चली जा रही है, हालात और खराब होते चले जा रहे हैं और रोशनी और खत्म होती चली जा रही है। और मेरी आजजाना राय यह है कि मुसलमानों के जवाल के मेरे नजदीक दो बुनियादी सबब हैं। एक ये कि उनके इल्म और अमल का महवर दूसरी तीसरी सदी के बाद कुरान नहीं रहा, और ये बिल्कुल एक हकीकत है। जिस आदमी की मुसलमानों की तारीख पर निगाह है वो इससे इनकार नहीं कर सकता। कुरान ना उनके इल्म का महवर बन सका ना उनके अमल का महवर बन सका। पहली 1.5-2 सदियां हैं जिसमें कुरान मजीद को यह हैसियत मुसलमानों के माशरे में हासिल हुई, उसके बाद कभी हासिल नहीं हो सकी। दूसरे ये कि मुसलमानों का जैसे ही एक बड़ी हुकूमत की सूरत में जहूर हुआ तो बजाय इसके कि वो तबई या साइंसी उलूम की से दिलचस्पी लेते, उनकी दिलचस्पी का असल मरकज फलसफा और तसव्वुफ बन गया। उनके तमाम बड़े बड़े लोग और जहीन लोग इसी के माहिरीन हुए। और ये जो अब चंद साइंसदानों का जिक्र लोग करते हैं तो असल में मगरब की साइंसी तरक्की से मुतासर होकर करते हैं, वरना अपने अपने जमाने में ये सब जिंदगी और मुहलत शुमार किए जाते थे। तो कभी मुसलमानों ने इनकी कदर नहीं की। ये दो असबाब हैं। अब इन दोनों असबाब को बजाय इसके कि मुसलमान अपने जवाल के जमाने में सोचते गौर करते और इनको दूर करने की कोशिश करते, इनको दूर करने के लिए जरूरी था कि वो एजुकेशन और तालीम का तरीका अख्तियार करते और अपनी पूरी कौम को एजुकेट करते। तो एजुकेशन और तालीम ना मुस्लिहीन का मौजू बन सकी, ना सियासी रहनुमाओं का मौजू बन सकी, ना मजहबी रहनुमाओं का मौजू बन सकी। उन्होंने अपने लिए सियासी लायामल इख्तियार किया। जो सियासी लोग थे वो तो सियासी लोग थे ही, मजहबी रहनुमा भी लंगर लगोट कस के मैदान में, उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे हाथ में दो फिर हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और हर जगह ये ख्वाब बिल्कुल एक समझ लीजिए कि बेमानी ख्वाब बन के रह गया। ना इसको शर्मिंदा ताबीर होना था ना ये हो सका। मैं अब भी यही समझता हूं कि मुसलमानों की लीडरशिप अगर इन दो असबाब को सामने रखकर लाअमल बनाए और मुसलमानों की तालीम को असल मसला बनाए, और तालीम सिर्फ BM करना नहीं होता बल्कि तालीम सही मानों में तालीम एजुकेट करें मुसलमानों को, दीन के मामले में भी दुनिया के मामले में। इस वक्त हम जाहिल तरीन कौम बन के रह गए और जहालत से गुर्बत पैदा होती है, गुर्बत से फिर रिवर्स होकर जहालत पैदा होती है और ये साइकिल फिर चल पड़ता है। इससे जब तक निजात नहीं होती उस वक्त तक कोई इम्कान नहीं। अभी तारीख ही तारीख। आपने फरमाया था कि आदम को सजदा कराना फरिश्तों का इम्तहान था। अगर ऐसा था तो जिनों में से एक जिन इब्लीस क्या ऐसे ही जुम्मा जंजलाल के तौर पर वहां दखल कर मालकूलात करके सजदा करने से इनकार कर बैठा? जी उस जिनों से भी यही मुतालबा किया गया था। यानी फरिश्ते और जिन्नात दोनों चूंकि बरतर मखलूक हैं तो इस वजह से दोनों से ये मुतालबा किया गया कि वो बज़ाहिर अपने से कमतर मखलूक के सामने अल्लाह के हुक्म पर झुक जाए, और दोनों ने इनकार कर दिया। इब्लीस ने इनकार कर दिया और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए। तो जो सबसे बरतर मखलूक थी वो तो झुक गई, लेकिन दूसरे दर्जे में जो मखलूक थी उसके सरबराह ने इनकार कर दिया। कुर्बानी के लिए निसाब क्या है? जैसे ज़कात के लिए 7 तोले सोना है, कुर्बानी के लिए कोई निसाब नहीं है क्योंकि कुर्बानी एक नफल इबादत है, ये कोई फर्ज नहीं है, ये नफल इबादत है। तो इसके लिए कोई निसाब मुकर्रर नहीं किया गया। आपको अल्लाह तौफीक दे, आपके हालात ऐसे हों कि आप ये इबादत कर सकें तो जरूर करें। ये मेरा नुक्ता नजर है। हमारे हनफी फुकहा इसको चूंकि वाजिब मानते हैं तो इस वजह से वो इसके लिए निसाब भी बताते हैं और ये कहते हैं कि जिस आदमी के पास इतने तोले चांदी या सोना हो जैसे ज़कात में होता है तो उसी पर कुर्बानी भी वाजिब होती है। तो वो अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि वो जितना आपके पास सोना चांदी होगा उसके बाद कुर्बानी तो वाजिब हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी तो फिर जाके बकरा खरीद के देनी पड़ेगी, तो उसके पैसे कहां से आएंगे?
एक वाजिब तो हो गई ना, अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप खरीदेंगे किस चीज से, क्योंकि उसमें से दी नहीं जा सकती। आजकल तो 52.5 तोले चांदी आप बेच भी दें तो बकरा क्या, बकरी का बच्चा पहले दिल का नहीं आता। इसलिए मेरे नजदीक ये कोई ठीक बात नहीं है, ये एक नफल इबादत है। अल्लाह आपको तौफीक दे कर लीजिए। शौहर कुर्बानी करे तो बीवी का फर्ज अदा हो जाता है, चाहे बीवी कमाने वाली हो। मैं तो चूंकि इसको फर्ज मानता ही नहीं हूं, इसलिए चूंकि एक नफल इबादत है तो शौहर को अल्लाह तौफीक दे वो भी करे, बीवी को अल्लाह तौफीक दे वो भी कर ले, और अगर पूरे खानदान की तरफ से एक कुर्बानी कर दी जाए ये भी काफी है, और अगर किसी वक्त हालात बहुत खराब हो जाए मुल्क कौम के तो पूरी कौम की तरफ से भी कुर्बानी कर दी जाए तो ये भी किफायत कर दी। शिर्क की वजाहत के हवाले से पूछना है कि टेस्ट ट्यूब बच्चे या आप जदीद साइंसी तरक्की के बाद बेटा या बेटी अपनी मर्जी से हासिल कर लेना भी क्या शिर्क है? नहीं, इसका शिर्क से क्या करना, यानी अगर आप अल्लाह ताला के अखलाकी हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करते जो अल्लाह ने कायम कर रखे हुए हैं, तो कदीम तरीन जमाने में लोग हकीमों के पास भी जाके बेटा बेटी के लिए इलाज कराया करते थे। ये एक खालिस साइंसी मसला है, इस वजह से इसमें कोई खराबी नहीं, अलबत्ता इसके कुछ अखलाकी हदूद है। मगर सारी कौम बेटियां पैदा करना शुरू कर दे तो सारे ही रणवे रह जाएंगे, और सारी कौम बेटे ही पैदा करना शुरू कर दे, देखिए खुदा की दुनिया में क्या होगा। तो अल्लाह के निजाम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि किसी आदमी के यहाँ बच्चा नहीं है, उसने इलाज के लिए रजू कर लिया, या इस तरह की किसी जरूरत को बस जरूरत की हद तक पूरा कर लिया, तो ये कोई ममनू नहीं है ना शर्क। हाल और मुस्तकबिल की जरूरतें मद्देनजर रखते हुए जो भी माल है उस पर ज़कात है, ये मैंने नहीं कहा। ज़कात तो आपके माल के ऊपर रियासत जब मुकर्रर कर देगी तो आयद हो जाएगी, और इस वक्त भी जिन चीजों में निसाब मुकर्रर है वो निसाब पूरा हो जाएगा तो आयद हो जाएगी। मैंने यह अर्ज किया है कि सिर्फ ज़कात ही आप पर लाजिम नहीं है, बल्कि एक मजीद बात यह कही गई है कि आपके पास आपकी ज़ाती और कारोबारी हाल मुस्तकबिल की जरूरतों के अलावा ज़कात देकर भी अगर कुछ रुपया बचा हुआ है तो वो अल्लाह का हक है जो आपके पास एक अमानत के तौर पर मौजूद है, उसको भी अगर कोई जरूरत सामने आ जाए तो खर्च कर दें, ना जरूरत सामने आ जाए तो आपका आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात नहीं है। नबूवत वही के नाजिल होने के बाद होती है या फिर नबी पैदा होते ही नबी होता है? हमें यह मालूम है कि अल्लाह ताला किसी इंसान का इंतखाब करते हैं और एक खास वक्त में उसको नबूवत के मनसब पर फायज कर देते हैं, ये हमें मालूम है। इस वजह से जब वो नबूवत का दावा करता है तो हम उस पर ही मान लाते हैं। रह गई ये बात कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या किसी आदमी की हैसियत पहले से मुतय्यन है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं और वही उसका फैसला करेंगे। हमारे पास तो नबी उस वक्त नबी बन के आएगा जब वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए खड़ा हो जाएगा, इसलिए ये हमारा कंसर्न ही नहीं है, मसला ही नहीं है कि पैदा होने के बाद क्या होता है। अरिस्तु पैदा होते ही अरिस्तु होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो बन जाता है तो भारत उससे सीखना पड़ता है। तो नबी का मामला भी यही। गुज़श्ता अदवार में जानवर इंसानों के लिए माशी और रिज्क का सामान होते थे, जानवरों की कुर्बानी की अहमियत नस्बतन ज्यादा थी, मगर आजकल तो जानवर हमारी जिंदगी में कदरे गैर अहम है तो कुर्बानी की क्या अहमियत रह जाती है? इसी वजह से पहले कुर्बानी फर्ज थी, बल्कि नमाज की तरह कुर्बानी की अहमियत भी थी, अब उसे एक नफल इबादत बना दिया गया। उसकी वजह यही है, ये जो तमद्दुन की तब्दीली है उसी को लिहाज करके साल में बस एक बार नफल इबादत के तौर पर इसको जारी किया। वालदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है, क्या ससुर और सास भी वालदैन में शुमार होंगे? बराए करम इस बात की वजाहत फरमा दें कि नाफरमानी में क्या कुछ शामिल है। हमारे पैगंबर ने हमको ये तालीम दी है कि तुम्हारे तीन बाप हैं, एक जिसने पैदा किया, एक जिसके यहां ब्याहे गए, एक जिसने तुमको इलम सिखाया। तो दर्जा बदर्जा इन सबको बाप ही के दर्जे में रखना चाहिए, और नाफरमानी ये नफ्स जरा वजाहत तलब है, यानी हुस्ने सलूक है जिसकी हमको हिदायत की गई। हम सबके साथ हुस्ने सलूक करें, इज्जत करें, एहतराम करें, बाकी बात तो किसी मौके पर गलत बात है तो माजरत भी करनी पड़ती है और ना मानने का फैसला भी करना पड़ता है। बनी इसराइल ने बैतुल मक़द्दस को अपना किबला कब करार दिया? इसकी कोई तारीख तो मुतय्यन नहीं की जा सकती, लेकिन जाहिर है कि इसको हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद ने बनाया है, और इस लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लम की बेसत से कमोबेश कोई 1000 साल पहले ये वजूद पजीर हुआ है, तो उसके बाद ही उन्होंने करार दिया। क्या उन्होंने ऐसा खुद ही किया था या किसी नबी ने ऐसा किया था? बगैर यही मालूम होता है कि उनके यहां ये चीज एक बिदत के तौर पर पैदा हुई और फिर इसकी इस्लाह भी की जाती है। اگر کوئی شخص پوری ایمانداری کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہو مگر جسمانی کمزوری اور اپنے اوپر قابو نہ پاتے ہوئے وقت پر نہ اٹھ سکے تو فجر کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ جیسے ہی اٹھے ادا کر لیں. اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے